भगवान चलने के लिए तैयार हो गए वृंदावन से विद्यानगर जाने के लिए उड़ीसा, मूर्ति तैयार हो गई चलने के लिए। उसने एक शर्त रखा, उलटिया आमा तुम्हें ना करी है दर्शन, आमा के देखिले हमें रहीब से स्थान। तुम उलट करके मेरे तरफ मत देखना, छोटे ब्राह्मण से साक्षी गोपाल जी ने कहा, अगर तुम मुझ पर देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। नुपुरेरा ध्वनि मात्र अमर सुनिदा, मैं चलूंगा पीछे पीछे, मेरे पैर में जो पायजेब है नुपुर है वो रुंझुन बजेगा, इसको सुनते हुए चलना है। सही शब्दे अमर गमन प्रतीति करीबा, सही शब्दे अमर गमन प्रतीति करीबा, इसी से मान लेना मेरे शब्द को सुन करके नुपुर के कि मैं चल रहा हूं। एक शेर अन्न रांधी करी है समर्पण, ताहा खाइया तुम्हारे संग एक करीब गमन। जब मुझे भोग लगाना हो तो एक शेर अन्न, एक शेर अन्न मतलब एक शेर एक किलो को कहते हैं, पहले लोग शेर कहते थे। तो भगवान कहे कि एक शेर अन्न रांधी करी है समर्पण, हमारे लिए एक सिर अन्न पकाना लगता है कि चावल कहीं कहे होंगे या जो भी हो रास्ते में जो मिले पका करके खिलाना है, पका पकाया कुछ होटल से खरीद कर नहीं खिलाना है, फास्ट फूड रांधी रांधी का से रंधन करके हमको खिलाना है। इसका मतलब है कि जहाँ खिलाना हो दिन हो रात हो जब भी भोग लगाना हो तो रंधन करके हमको खिलाना, एक से रंध। इसका मतलब दिन भर में एक बार भगवान कहे, चाहे ब्राह्मण को क्या परेशान करे कहाँ कहाँ खाते चले, उन्होंने कहा कि एक बार हमको खिलाना। कहा खाइया तुम्हार बसे तुम्हारे संगे करी गए गमन, और मैं खा करके फिर तुम्हारे पीछे चलूंगा, लेकिन चलते समय हमको मत देखना, चलते समय केवल पायजेब की ध्वनि सुनना। आरती में आज्ञा मांगी चली ला ब्राह्मण, तारे पाछे पाछे गोपाल करी ला गमन। तो दूसरे दिन वो ब्राह्मण भगवान से आज्ञा मांगा कि तब ठीक है चलिए आज चलते है, भगवान ने कहा ठीक है। तो वो चलने लगा ब्राह्मण, तो तार पाछे पाछे गोपाल करिला गमन, उससे छोटे ब्राह्मण के पीछे पीछे भगवान चले। वृंदावन में मंदिर में थे, अल्टे छोड़ करके चलने लगे, नुपुर की ध्वनि से पता चलता था, हमेशा वो ब्राह्मण शब्द सुनता रहता था, बहुत सुंदर नुपुर की ध्वनि होती थी। नुपुरेरा ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम मन पाक करी कराए भोजन। इस तरह चलने लगा, और जब ठाकुर जी के खाने का समय होता था, जो सामान्य मनुष्यों का समय होता है वही भगवान का समय होता है, लगभग 9-10 बजे भूख लग जाती होगी भगवान को। तो उत्तम अन्न बहुत श्रेष्ठ कोटि का आटा या चावल आदि लेकर के पकाता था, लंघन करता था। अन्न का अर्थ होता है भोजन, उत्तम अन्न बहुत अच्छा शुद्ध लेकर के और घी आदि भी भगवान के लिए पकाता था। ऐसे उड़ीसा में और बंगाल में अन्न मतलब भात समझते हैं, अन्न लागे मैं तो पूछते हैं चावल को अन्न कहते हैं, लेकिन यहाँ अन्न का अर्थ है भोजन, उत्तम भोजन कराता था। यही मतलब चली विप्ल निज देश आईला, ग्रामेर निकट आशी मन के चिंतिला। गांव के निकट आ गया लड़का, गांव के निकट आ गया। अब गांव थोड़ा ही दूर था, लगभग आधा किलोमीटर उससे भी कम। तो सोचने लगा ब्राह्मण, ये दिन मैं ग्राम आई नु जाय भवान लोकेर कहिब गिया साक्षी आगमन। अब मैं आ गया अपने गांव में और अब मैं घर जाऊंगा, गांव में जा करके कहूंगा कि गोपाल आ गए गवाही देने के लिए। साक्षा तेना देखिले मने प्रतीति न है। यदि डायरेक्ट भगवान को लोग नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं ले जाता हूँ और घर में रख देता है तो सोचेंगे कि पहले से बना करके रखा होगा, मूर्ति चाहे कहीं से मंगा लिया। बाहर गांव से रोकूंगा इनको तो सब लोग आएंगे, देखेंगे हाथ चल करके आए हैं। तो बिना डायरेक्ट देखे प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा लोगों को। इसीलिए उसके मन में आया कि यहीं रहे, यहां यदि रहे तब ना ही कुछ है। अगर यहां रहते हैं तभी कोई अब डर भय नहीं है, यहां गवाही दे सकते हैं, ये सोच ही रहा था। तो ये तो भावी से विप्र देखी फिर या देखी लो चाहे लो, ये सोच करके ठाकुर जी पर पीछे मुड़कर देखा तो वे हंसने लगे, हंस रहे थे कि अब तुम हमको देख रहे, अब मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा गांव से बाहर। तो हसिया गोपाल देव तथा तो रही लो, हंस करके गोपाल जी वहीं रह गए और कहे ब्राह्मण रे कहे तुम्हें जहां लीज घर इथा रही अमी न जाब अतः पर। अब तुम अपने घर जाओ और मैं यहीं रहूंगा और यहां से आगे नहीं जाऊंगा। तबे से विप्र जाई नगरे कहिला सुनिया सकल लोक चमत्कार है। जाकर के लड़का गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा चलिए ठाकुर जी आ गए, भगवान चल करके आ गए। तो सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अब तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि मूर्ति चलती है, अरे वृंदावन से इतना लॉन्ग डिस्टेंस इतना दूरी से और भगवान आए। आई ल सकल लोक साक्षी देखी बारे, गवाह को देखने के लिए, साक्षी गोपाल को देखने के लिए सब लोग आए। गोपाल देखिया लोक दंडवत करे, और गोपाल जी को देख करके सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित प्रतिमा चलिया आईला सुनिया विस्मित। गोपाल जी के सौंदर्य को देख करके लोग चकित थे और सबसे भारी आश्चर्य ये हो रहा था कि मूर्ति चल करके आई है, कुछ लोग पैर का निशान भी देख रहे थे, कुछ लोग और दूर तक गए, सही में मूर्ति चल करके आई है, बहुत विस्मित है। तबे से बड़ा विप्र आनंदित हैया गोपाले रहा आगे पड़े दंडवत हैया। वो जो बड़े ब्राह्मण थे जिनको कन्या दान करनी थी, जो अपनी कन्या का दान करने वाले थे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए, तो उनकी बात सत्य हो गई, बहुत प्रसन्न थे। आकर के गोपाल जी को दंडवत प्रणाम किए। सकल लोके रे आगे गोपाल साक्षी दिला बड़ा विप्र छोट विप्र कन्या दान कैला। कहा गया लड़का कहा कि ठीक है तो आप क्या क्या देखे हैं बोलिए। भगवान ने सब चीज बोले कि ये दोनों गए थे, ये दिन था, इस समय मेरे सामने बातचीत किए और बड़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी कन्या का दान करूंगा, विवाह करूंगा छोटे ब्राह्मण से। पूरा विस्तार से भगवान ने गवाही दिया। और जैसे आदमी बात करता है कुछ हाथ का संचालन करता है, आंख का संचालन करता है, हंसता है, इस तरह से भगवान हंस रहे हैं। और गवाही दिए। जब भगवान ने गवाही दिया खूब धूमधाम से विवाह हुआ छोटे ब्राह्मण से। तबे से ही दुई विप्रे कहिला ईश्वर तुम्हें दुई जन्मे जन्मे अमर किंकर। तुम दोनों ब्राह्मणों से भगवान ने भी कहा आप दोनों मेरे जन्म जन्म में नित्य दास हो, तुम मेरे दास हो, मेरे एसोसिएट हो तुम दोनों। दुहार सत्य तुष्ट है लन दुहे मांगा बर, दुई विप्र बर मांगे आनंद अंतर। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम मेरे नित्य पार्षद हो दोनों, मैं तुम तुम्हारे सत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अब मैं प्रसन्नता से तुमको वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। यदि वर दीबे तबे रह यही स्थाने। तो दोनों ने वर मांगा, यदि आप हमको वर देना चाहते हैं तो अब वृंदावन मत जाइए, यही रहिए, अब यही रहिए। किंकर एरा दया तब सर्व लोक जाने। तो आप अपने भक्त से अपने दास से कितना प्रेम करते हैं सारा जगत इसको जाने। ये कथा सुनेगा कि भगवान चल करके आए हैं यहाँ आए, तो इस क्षेत्र में रह करके आप यहाँ के लोगों का उद्धार कीजिए, दर्शन दीजिए, यहीं रहिए। गोपाल रहिला दुहे करे न सेवान, देखते आईला सब देश जत लोक जन। तो गोपाल वहीं रह गए और दोनों ब्राह्मण सेवा करते थे, बड़ विप्र और छोट विप्र दोनों सेवा करते थे। वही पुजारी हो गए, भगवान वहीं रहे और अपने अपने देश से क्षेत्र से लोग आया करते गोपाल जी का दर्शन करते थे। से देश राजा आई लो आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाई लो गोपाल देखिया। उस देश के राजा आए ये आश्चर्य सुनकर कि भगवान वृंदावन से चलकर आए हैं, श्री विग्रह चलकर के आया है। तो आए और गोपाल को देख करके परम सुखी हुए। उनका नाम था पुरुषोत्तम राव, राजा का नाम था पुरुषोत्तम। ये महाराज प्रताप रुद्र के पूर्वज थे। चेतन में आप लोग के समय में तो महाराज प्रताप रुद्र थे, लेकिन इनके पहले बहुत पहले पुरुषोत्तम थे नाम था। उन्होंने दर्शन किया भगवान का। मंदिर करिया राजा सेवा चलाई ला, साक्षी गोपाल बलि तार नाम दई। साक्षी गोपाल बलि तार नाम ख्याति है। वृंदावन से आए थे केवल गोपाल नाम था, लेकिन उड़ीसा में साक्षी गोपाल नाम यही प्रसिद्ध हुआ है, गवाह गोपाल साक्ष्य देने के लिए आए थे। उनके लिए राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया और मंदिर बना करके सेवा का भी प्रबंध कर दिया। केवल मंदिर ही नहीं बनाया, सेवा चलती रहे अबाध गति से, वो भी सब व्यवस्था किया। भगवान का भी खर्चा है ना, ऐसे नहीं बस मंदिर बना दिए बैठा दिया भूखे ठाकुर जी पाए। न कोई आरती न पूजा न कोई फेस्टिवल कुछ नहीं, तो मंदिर बनवाया और सेवा का भी प्रबंध किया। एक बार एक मंदिर में एक व्यक्ति को रखने की बात चल रही थी, तो वो कहा कि हम इतना खर्च लेंगे। एक भक्त कहते हैं अरे भगवान की सेवा करो, सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए, क्या लोगे। तो मैंने कहा कि भगवान की सेवा करेगा तो इसका खर्चा कौन देगा, भगवान देंगे। हाँ तो भगवान देंगे ना, तो उनके दरबार में पैसा है वो देंगे। पूजा करने वाले को देना चाहिए ना। निष्काम सेवा का ये मतलब नहीं है कि उसका खाना, उसको भोजन भी न मिले, कपड़ा भी न मिले, तो सेवा क्या करेगा। वास्तव में भगवान में उतना खर्च नहीं होता है, खर्च पुजारियों में होता है। लेकिन भगवान तो चुपचाप खड़े हैं, कभी मांगेंगे भी नहीं, न तो उनको और चीज की जरूरत पड़ती है। पर पुजारी अगर रहे भगवान की सेवा में, तो पुजारी का खर्चा भगवान का ही खर्चा है। और भगवान का जो कोष है, जो स्टोर है, पैसा है, तो उसमें से उड़ेगा, स्वाभाविक है। भगवान की सेवा में रहेगा तो उसका खर्चा दूसरा देगा, भगवान को देना पड़ेगा। इस तरह से प्रचार हुआ, यही सब विद्यानगर साक्षी गोपाल, यही मत विद्यानगर साक्षी गोपाल, सेवा अंगीकार करी आसन चिरकाल। इस तरह से चिरकाल तक विद्यानगर में रहे, जहां वो रुके थे वही मंदिर बनाया गया। अच्छा, उसमें राजा का नाम नहीं दिया गया, राजा मंदिर बनवाया उस स्थान पर। लेकिन उत्कल के राजा, उत्कल एरा राजा पुरुषोत्तम देव नाम, सही देश जिनी नील कर या संग्राम, लेटर देर वॉज अ फाइट एंड दिस कंट्री वॉज कंकर्ड बाई किंग पुरुषोत्तम देव ऑफ उड़ीसा। इसमें मतलब ये उड़ीसा भारत स्वतंत्र होने के बाद सब डिवीजन हुआ, पहले देशी राजाओं का राज्य था। तो विद्यानगर के राजा दूसरे थे, इस देश पर आक्रमण करके उड़ीसा के राजा जिनका नाम पुरुषोत्तम था, उन्होंने जीत लिया उस नगर को, विद्यानगर को। और सही राजा जिनी नील तार सिंहासन, माणिक सिंहासन नाम अनेक रखा। विद्यानगर के जो राजा थे उनके पास एक बहुत सुंदर सिंहासन था, राजा का सिंहासन, माणिक के सिंहासन, वो डायमंड का बना हुआ सिंहासन था, चारों तरफ से डेकोरेशन था। उसका नाम ही था माणिक के सिंहासन, माणिक के कहते हैं हीरा को। और उसमें अनेक और भी रत्न लगे थे। पुरुषोत्तम देव सही बड़ा भक्त आ गोपाल चरणे मांगे चलम और राज। तो राजा पुरुषोत्तम देव तो जीत लिए विद्यानगर को, इसके बाद भगवान का दर्शन करने गए तो कहे कि हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, यहाँ बहुत दिन रहे। तो तार भक्ति बसे गोपाल तारे आज्ञा दिल, गोपाल लैया से कटके आईल। तो राजा पुरुषोत्तम देव के भक्ति के बस में है भगवान। जब राजा ने कहा कि हमारे साथ चलिए, तो भगवान ने स्वीकार किया, ठीक। तो उनके साथ कटक आ गए। कटक का अर्थ ही होता है कैपिटल, राजधानी। आज भी कटक शहर है, पुरी से 60 किलोमीटर है भुवनेश्वर, पुरी से। और 20 किलोमीटर भुवनेश्वर से कटक, महानदी के तक। तो वहां कटक में भगवान आ गए। जगन्नाथ आनी दिल माणिक सिंहासन, कटके गोपाल सेवा करें स्थापन। तो कटक में साक्षी गोपाल जी रहे, तो जो सिंहासन जीते थे राजा पुरुषोत्तम देव विद्यानगर के राजा से, तो सिंहासन ले जाकर जगन्नाथ जी को दिए, जगन्नाथ जी के लिए भेज दिए। तहार महिषी आयला गोपाल दर्शन, भक्ति करी बहु अलंकार कैला समर्पण। तो जब कटक में साक्षी गोपाल जी स्थापित हुए, राजा पुरुषोत्तम देव स्थापित किए, तो उनकी पत्नी रानी आई देखने के लिए साक्षी गोपाल जी को। बड़े सावधानी से सुने एक घटना। तो रानी दर्शन के लिए आए तो बहुत रत्न समर्पित किया साक्षी गोपाल जी को। भगवान जहां रहते हैं अपने आप सब इकट्ठा कर लेते हैं, मंदिर से निकल कर कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता है इनको, अपने आप लोगों के हृदय में प्रेरणा कर करके बुला लेते हैं, अपने आप भेंट मिलता है और दूसरे की तरफ मंदिर से निकल करके कुछ मांगते नहीं, हमको ये दीजिए हमको ये दीजिए। भगवान ऐसे रहते हैं, जहां रहते हैं वहां समृद्धि आ ही जाती है। तो बहुत लोक में भर गया तो रानी के नाक में एक नासा मोती था। नासा मोती मतलब नाक में छिद्र होता है, तो वहां पर बहुत कीमती और बहुत सुंदर मोती लगाई थी रानी। तो और रत्न दिया तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान को ये मोती दूं, पर्ल देना चाहिए। वही पहनती थी वो, लेकिन अब ठाकुर जी के नाक में कोई मोती नहीं था तो वो सोचने लगी कि ठाकुर जी के नाक में छेद होता तो मैं ये मोती दे देती इनको लगाने के लिए। बहुत कीमती मोती था, लेकिन वो बेचारी चिंता न पड़े कि नाक में छेद नहीं है, इस समय करने में छेद बहुत कष्ट होगा, इसलिए चिंता न करे, देना चाहती थी अपने नाक का मोती लगाए गई। पहले इस जाने को क्या करते हैं, इसलिए लगाती हैं। तो वो भगवान को देना चाहती थी, किसी को ये शंका नहीं करनी चाहिए। स्वयं पहना हुआ गहना, ये सोना आदि जूठा नहीं होता है, सोना पड़ा है और कोई सोचे तो दूसरे का है, शिष्ट है जूठा, वो तो मूर्ख है ना। सोना है तो सोना जूठा नहीं होता है। तो ये रानी की इच्छा हुई कि मैं जिस नाश्ता मोती को पहनी हूँ वो ठाकुर जी को दूं, साक्षी गोपाल को। ये बिल्कुल स्वाभाविक था और प्रेम में उसने ये नहीं विचार किया कि ये हमारा पहना हुआ है, वैसे दूसरा मोती नहीं था इसीलिए देना था। परंतु यह रंगना शास्त्र बहुमूल्य मुक्ता है, तहा देते इच्छा है मन के चिंता है। उसके नाक में बहुत सुंदर मोती मुक्ता था, उसको देना चाहते थे और सचिन बने। ठाकुर नाशाते यदि छिद्र थकी तो तबे एक दासी मुक्ता नाशा पर आई। यदि ठाकुर के नाक में छेद होता तो मैं इनको पहनाती मूर्ति। ये तो चिंती नमस्कारी गेला स्वभावन है, रात्रि से गोपाल तारे कहे न स्वपन है। बेचारी ये सोचती हुई रानी जाकर के अपने घर में सो गई रात। बहुत इच्छा थी तो सपना में साक्षी गोपाल प्रकट हुए रानी के सपना में और कहने लगे, बाल्य काले माता मोर नासा छिद्र कौन। बचपन में मेरी माता ने मेरे नाक में छेद करवाया था, कान में और नाक में छेद करवाया था, लेकिन और छेद कराया था और माँ यशोदा ने हमको मोती पहनाया था नाक में, बचपन में ऐसा हुआ था। तो मुक्ता पहला या बहुत जत्न कर लिए, बहुत प्रयास करके जत्न करके उसने हमको मोती पहनाया था। रानी को भगवान कह रहे हैं, सही छिद्र अव्यक्ति है आचार्य दशा पे, सही मुक्ता पड़ा है जरा चाहिए चिंती। तो भगवान ने कहा कि वो छेद आज भी मेरे नाक में है, बचपन में किया छेद आज भी है, तुम पहना सकती हो, जो हमको देना चाहते हो दे सकती हो, क्योंकि भगवान मांग रहे हैं रानी का पहना हुआ भक्ति का ऐसा तो भाव है। भगवान सपना में कहे कि हमारे नाक में छेद है, तुम पहना सकती हो। पहले बचपन में सबके नाक में और कान में छेद किया जाता था, कान में कुंडल पहनते थे लोग। यह तो कभी कभी हम देखते हैं, खास करके स्त्रियों किसी किसी काम में छेद नहीं होता तो कान के ऊपर ही झुला देते हैं। ऐसा होता है किसी किसी का। जिसके कान में छेद होता है तो कुछ कोई न कोई आभूषण कुछ डाल लेते हैं। उसी भगवान को सबसे बड़े शौकीन व्यक्ति है। अगर रानी को इच्छा है पहनाने की तो भगवान ने कहा कि उनको पहनना हो। क्या भगवान स्वयं नहीं बना सकते थे? सारे जगत के ईश्वर हैं, सारा रत्न धन उनका है, लेकिन एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान सपना में मांगे कि हमको पहनना हो, हमारे नाक में छेद है। से छिद्र अव्याप्य आश्रय न सत्य, वो छेद आज भी नाशिका में है। से मुक्त पराह चाहिए छिद्र, इसको तुम लेना चाहते हो ले करके हमको पहना। स्वप्न देखी से ही रानी राजा के कहेला, राजा सब मुक्त लिया मंदिर आएगा। रानी ने जग करके महाराज पुरुषोत्तम देव से कहा कि ऐसा ऐसा भगवान ने सपना दिया है, चलिए मंदिर। तो वो अपने पति के साथ मंदिर आई। पराई लुक्त न से छिद्र देखिया, महामहोत्सव पहले आनंदित है। अपने हाथ से डायरेक्ट रानी ने भगवान को पहनाया, वो नहा धोवा करके आई, मंदिर में प्रवेश की और मुक्त भगवान को पहनाए। जिसके लिए भगवान सपना में इस तरह की बात कहे हैं, अब उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि सेकंड इनिशिएशन हो ये तब मंदिर में प्रवेश करो। तो मंदिर में तब बलराम जी भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि तब सेकंड इनिशिएशन लेकर जाइए। रानी ने डायरेक्ट अपने हाथ से भगवान को पढ़ना है, भगवान ने स्वीकार। पराई लो मुक्ता नाश है छिद्र देखिया, महामहोत्सव कैला आनंदित रहिया। उसने मोती पहनाया सचिव पाल जी को और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसने खूब नाच गान महाप्रसाद वगैरह बहुत हुआ। सही है ते गोपाल कटक के स्थिति यही लगी सचिव गोपाल नाम ख्या। यही है तो जब से महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान को कटक में ले गए तब से कटक नहीं है। जिस समय नित्यानंद प्रभु कथा कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए थे आज से लगभग 500 वर्ष पहले, 500 से कुछ पहले, तो उस समय साक्षी गोपाल कटक में ही थे। अब साक्षी गोपाल नगर में आ गए हैं, लेकिन पहले कटक में थे। सही है ते गोपाल कटक एत स्थिति यही लगी साक्षी गोपाल नाम है ख्यात, और साक्षी गोपाल नाम भी ख्यात। नित्यानंद मुखे सुने गोपाल चरित, तुष्ट हैला महाप्रभु स्वभक्त सहित। नित्यानंद प्रभु के श्रीमुख से साक्षी गोपाल का यह चरित सुन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ बहुत प्रसन्न हुए। गोपाले आगे जब प्रभु है स्थिति, भक्तगण देखे देने दूहे एक मूर्ति। जब चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए साक्षी गोपाल के पास तो सब भक्तों ने देखा कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु और साक्षी गोपाल एक। दूहे एक वर्ण, दूहे प्रकांड शरीर, दोनों का एक वर्ण हो गया। चैतन्य महाप्रभु समय गोरे नहीं रह गए, साक्षी गोपाल जैसे साउंड दिख रहे थे। दुहे एक वर्ण, दुहे प्रखंड शरीर, दोनों का शरीर बहुत बड़ा था। दुहे रक्तांबर दुहा स्वभाव गंभीर, और दोनों लाल कपड़ा पहने थे। ये सन्यासी थे, लाल कपड़ा पहने थे, रक्त अंबर, और साक्षी गोपाल भी वैसे ही पहने थे। तो महातेजमय दुहे कमल नयन दुहार दुहार भवा, ऐसे दुहे चंद्र बदन, दोनों के मुख चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। वास्तव में सन्यासी के रूप में साक्षी गोपाल नहीं हुए, चैतन्य महाप्रभु ही साक्षी गोपाल के रूप में हुए। बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों का भावावेश था। दुहा देखे नित्यानंद नंदर महारंगे ठाड़ा ठाड़ी करी हासे भक्त वंशन, चैतन्य महाप्रभु जब देखे दोनों को, दो कृष्ण खड़े, नित्यानंद प्रभु खूब हंस रहे थे, क्या लीला है तुम्हारा। ऐ मत महारंगे शिवरात्रि वंचिया, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया। इस प्रकार उस रात को चैतन्य महाप्रभु वही निवास किए, और प्रातः काल मंगल आरती देख करके वहां से चले जगदपुरी के लिए। भुवनेश्वर पथे जैसे कैल दर्शन विस्तारी वर्णिया छन दास वृंदावन, कटक से फिर भुवनेश्वर आए। भुवनेश्वर कटक बीच में और भुवनेश्वर पहुंचने पर जो जो दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु, तो इन सबका बड़े विस्तार से वृंदावन दास ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत में। कमलपुरे आशी भागवी नदी स्नान कैल नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिला। कमलपुर में आकर के, पुरी से पहले है, कमलपुर में आकर के फिर भार्गी नदी में स्नान किया। भार्गी नदी तो वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को त्रिदंड दिया अपना धोने के लिए। नित्यानंद प्रभु ले लिए और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु भागने लगे। बहुत जोर से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, वो हाथ को खाली कर लिया, हाथ ऊपर करके नाचते गाते हुए जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये दंड बेकार हो रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं और ये दंडी सन्यासी बने हुए हैं। उन्होंने दंड को तीन खंड करके नदी में फेंक दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु मिले, बाबा बेस कम हुआ मिले तो देखे दंड नहीं, पूछते हैं नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कहे नित्यानंद कहां मोर दंड। नित्यानंद कहे दंड हल तीन खंड। पूछा भगवान ने हमारा दंड कहाँ है, दंड कहाँ है, तो नित्यानंद प्रभु कहे दंड तीन खंड होकर के चला गया। अरे आपने तोड़ दिया, उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं, हमारा संन्यास धर्म आपने नष्ट कर दिया है, अब हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम या तो अकेले जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन कर लें जगन्नाथपुरी, हम पीछे जाएंगे चाहे आप लोग पीछे रहिए, हम आगे जाएंगे चाहे पीछे जाएंगे, हम साथ में नहीं जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट कर दिया है, सत्संग में पड़ गया, हमारा दंड खत्म किया। नित्यानंद प्रभु कहे आप एक पाखंड मत कीजिए, आप दंड चंड क्यों ले रहे हैं, आप स्वयं जगन्नाथ जी हैं, आप जगन्नाथ जी हैं, इसमें 33 करोड़ देवता हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि देवता लोग आपके कंधे पर चढ़े। आपके कंधे पर देवता चढ़े, आप तो सबके स्वामी हैं, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान ही हैं, उन्होंने दंशन भंग किया। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु बनावटी क्रोध कहे, तुम लोग आगे जाओ चाहे पीछे रहो, हमारे साथ मत चलो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है आप आगे जाइए, अगर आगे जाएंगे तो हम लोग दौड़ दौड़ करके पकड़ लेंगे, पीछे कहाँ गए तो भाव आवेश में कभी पीछे चलते थे, भाव के आवेश में गाते हुए नाचते हुए कभी पीछे चले जाते थे, कभी बगल में कहीं कुछ पता नहीं रहता था, नदी में गिर कर स्नान करने लगते थे, जो नदी देखते थे जमुना समझते थे, जमुना आ गए बस कुछ पड़ते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं आप आगे चलिए हम लोग पीछे रहेंगे। तो आगे चलने लगे, बहुत तेज गति से भावावेश में जा रहे थे। जब मंदिर में पहुंचे तो अकेले पहुंचे चैतन्य महाप्रभु, मंदिर में जगन्नाथ जी को देखते ही हाँ प्रियतम हाँ श्याम सुंदर कह करके गिर पड़े, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन मिला, तो राधा भाव में थे, राधा रानी के भाव में हमारे प्रियतम मिले हैं, मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, ऐसे मूर्छित हो गए कि अब लगता था कि प्राण ही नहीं है। तो परीक्षा जो होते हैं मंदिर में छड़ी दिए रहते हैं वे सब मारने दौड़ेगी, कहां से आकर के मर गया, मंदिर धोना पड़ेगा, अशुद्ध हो गया, ऐसा लोग यही सोचे कि मर गया, कहीं से हा कृष्ण कहते हुए आया, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, ही मर गया, वो मारने दौड़े पहले जीवित समझ करके, इसके बाद तो मरा हुआ समझ। अब जो मारने जा रहे थे हटाने जा रहे थे उसी समय राजा के पुरोहित पद पर नहीं गुरु थे गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, उसी समय मंदिर में प्रवेश किया, संयोग की बात है। आए जब उन्होंने सन्यासी का तेज देखा और इतना सुंदर शरीर कि वे पहले रोके उन सबों को, पुजारी वगैरह थे रोके, रुको रुको, उन्होंने देखा कि कोई महान पुरुष है, महान भक्त, अद्भुत शरीर है, और चेक करने लगे कि प्राण है कि नहीं शरीर में, वो सावधानी से देखने लगे तो छाती पर हाथ रखे कोई स्पंदन नहीं था, बड़े निराश हुए। उसके बाद बहुत बारीक रुई लेकर के कटल लेकर के और नासिका के पास रखे तो थोड़ा थोड़ा आंदोलित हो रहा था रुई, तो ये आशा हो गई का प्राण है, प्राण है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इनको चार व्यक्ति से टंगवा करके और अपने भवन लेंगे, अपने घर लेंगे। तब तक नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के मंदिर नहीं आते थे, और लोग जो थे दौड़े हुए आए, आ करके इधर उधर पूछते थे कोई सन्यासी आया इधर, कोई सन्यासी आया, तो किसी ने बताया कि हाँ आया था और आते ही मंदिर में मर गया। आया था लेकिन उसको टंगवा करके ले गया है सार्वभौम अपने घर, सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए। तो ये लोग दर्शन भी नहीं किए नित्यानंद प्रभु, पता लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए अपने घर, तो घर का पता पूछ करके लोग गए, गए देखे तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल बेहोश पड़े विशुद्ध। तो भगवान का स्वभाव तो लोग जानते थे, तो उच्च स्वर से संकीर्तन चालू किया नित्यानंद प्रभु ने, भक्त लोग गाने लगे, बहुत जोर से कीर्तन होने लगा आनंद से, चैतन्य महाप्रभु फिर जगे, हरि बोल हरे कृष्ण कह करके उठे। तब जब उनको देखे थे बेहोश अवस्था में तो ऐसे नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दामोदर आदि भक्त, ये तो इन लोग लगता था कि यही मर जाएंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु को उस दशा में पहले नहीं देखे, देख करके ऐसा लगा कि ये भक्तों का ही शरीर छूट जाएगा, लेकिन कीर्तन जब चालू किया तो चैतन्य महाप्रभु उठे, कुछ देर के बाद फिर कीर्तन चलता रहा, जब बिल्कुल स्मृति में आ गए, सेंस में, कॉन्शियसनेस में आ गए कहिए, तो नित्यानंद आप कहां से आ गए, यहां कैसे आप लोग आए, अभी कहां पर मैं हूं, कहां पर मैं आ गए। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप हम लोगों से कहे कि आगे चलो चले पीछे, तो हमने कहा कि आप आगे चले, तो आगे आप भाग करके जगन्नाथ जी के पास आ गए, तेज करके हम लोग दौड़े आ रहे हैं। मंदिर के पास पता चला कि आप मूर्छित हो गए हैं, लोग तो ये हल्ला कर रहे हैं कि सन्यासी बंगाल वाला आकर के मार गया, तो हम लोग तो प्राण उड़ गए थे, आपका इस दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं किसके घर में हूँ। तीस सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर थे, आपके दास का घर है, आपका घर है, हमारा घर नहीं आपका घर है, आप यही रहिए। बहुत सुंदर युवक सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु, और सार्वभौम भट्टाचार्य परम विद्वान ब्राह्मण थे और शंकराचार्य के संप्रदाय में दीक्षित थे, अद्वैत मत के बड़े समर्थक थे। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर दीक्षा दिया गया, प्रसाद कराया गया, स्नान आदि करके खाए, पता लगा कि कहाँ के सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब होश हुआ तब प्रणाम की, सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रणाम किए, तो प्रणाम में कहे नमो नारायण, नमो नारायण राय, नमो नारायण, सन्यासी लोग बोलते हैं, तो उसी पंथ में थे सार्वभौम भट्टाचार्य, कहे नमो नारायण। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कृष्ण मति रस्तु, चकित हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य, लगता है सन्यासी है लेकिन कोई वैष्णव सन्यासी है। कृष्ण मति रस तो कृष्ण में मति रहे, ये आशीर्वाद वैष्णव लोग देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कहे कि हे नारायण आपको प्रणाम है, तो अद्वैत मत में सबको नारायण समझ रहे थे, आप कहे नमो नारायण तो भी कहता है नमो नारायण, सन्यासी को नारायण समझते हैं, भगवान समझते हैं, और वो भी सबने ब्रह्म को देखता है तो वो भी कहते हैं नमो नारायण। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण मति रस्तु, आपकी मति कृष्ण मेरा है, तो चकित हो गए। लेकिन उन्होंने पता लगाया कहाँ के हैं, और सबसे पूछ करके नित्यानंद हुआ जैसे, तो पता लगा कि ये बंगाल के हैं, नवद्वीप में इनका घर है और इनके पिता जगन्नाथ मिश्र हैं, और यहाँ के नीलांबर चक्रवर्ती के ये नाती हैं, वो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती। ये जब नाम सुना सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो उन्होंने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती से इनका बड़ा परिचय था सार्वभौम भट्टाचार्य, तो बड़ा वात्सल्य भाव मरा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठे एकांत में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा देखो बेटा तुम्हें अभी युवक हो और सन्यास ले लिए, सन्यास धर्म निभाना बड़ा कठिन है, युवक होता है तो उसकी इंद्रियां संसार का भोग करना चाहती हैं, देखना सुनना है सब, ऐसे तुमको कि सन्यास का जो नियम है तुम पालन करो, मैं तुमको वेदांत पढ़ाऊंगा, इसलिए वेदांत पढ़ाऊंगा कि तुम्हें वैराग बना रहे, ईश्वर का ज्ञान रहे ब्रह्म का, और तुम सन्यास की रक्षा कर पाओगे। चैतन्य महाप्रभु का ठीक है, मुझे पता नहीं चला मैं पागल हो गया था और सन्यास ले लिया, मैं क्यों सन्यास लिया, क्या करूं, तो हमको कोई ज्ञान नहीं है, आप हमारे सब कुछ हैं, आप पिता हैं, आप बंधु हैं, सब कुछ, तो आप हमको जरूर पढ़ाइए। सब हम भट्टाचार्य बड़े स्नेह में वत्सल भाव में थे कि बेचारा कैसे संन्यास निभाएगा, उसको पढ़ाए। तो पढ़ाने के लिए बैठ, चैतन्य भाग पढ़ने के लिए बैठ, 7 दिन लगातार पढ़ाए। वेदांत सूत्र पढ़ते थे, व्याख्या करते थे, व्याख्या क्या करते थे, श्रीपाद शंकराचार्य जो टीका लिखे हैं उसी को पढ़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे। तो 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ शौक हुआ, ये समझता है कि नहीं समझता है, आखिर कुछ तो कहना चाहिए ना, यहाँ ठीक है। तो 8वें दिन पूछते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं तुमको 7 दिन से पढ़ा रहा हूँ वेदांत, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बुझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर नहीं समझते हो तो फिर और व्याख्या करूंगा, शुरू से पढ़ाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, वो पूछे कि बुझ कि न बुझ है या बुझी तो न पारी, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ कि वास्तव में तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारा ज्ञान कितना है। तो चैतन्य महाप्रभु अजीब ढंग से बोल कहे कि आचार्य, आप जब ब्रह्म सूत्र बोलते हैं टेक्स्ट मूल, तो वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब टीका बोलते हैं, जब व्याख्या आप करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। बताए टेक्स्ट समझ में आ रहा है और उसकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। तो ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र तो निर्मल सूत्र की तरह है, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह उसके अर्थ को, प्रकाश को ढक रही है। इतना भारी क्रिटिसाइज करना उसका वेदांत सूत्र शुद्ध के समान है और आपकी व्याख्या बादल के समान छा करके अर्थ सुखाने नहीं दे रहा। इतने बड़े विद्वान को इस तरह से पढ़ा करना तो दंग हो गए। इस प्रकारांतर से कहना था कि आपकी व्याख्या बिल्कुल रद्द है। कहने का ये आशय, सार्वभौम भट्टाचार्य तो पूरे भारत में विख्यात विद्वान थे, तो तुम मूल को समझते हो। हाँ, वो तो क्लियर है बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह, लेकिन आपकी व्याख्या का बादल उसको ढक रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, क्या अर्थ समझते हो? प्रथम सूत्र बोले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य जतः, ये सब श्लोक सूत्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब व्याख्या चालू किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य का सारा अज्ञान दूर हो गया। ये सुनने लगे, पढ़ाने बैठे थे, अब वही पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते तो विश्वास हो गया, समझ गए कि ये साक्षात भगवान है, ये कोई भक्त नहीं है। तो ये घटना बड़ी है, इसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान से आप वास्तव में कौन है, हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको षड्भुज रूप में दर्शन दिया, 6 भुजा में, 2 हाथ में धनुष बाण श्री राम के रूप में और 2 हाथ में बांसुरी बजाते हुए और फिर त्रिदंड लिए हुए चैतन्य महाप्रभु। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं श्री राम। सार्वभौम भट्टाचार्य का आज भी स्थान है श्वेत गंगा के तट पर, जगन्नाथपुरी गए हैं, सब देखे हूँ। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, बहुत विस्तार से सब लीला है, बहुत आनंददायिनी लीला है। मैं तो थोड़ा सा प्रसंग पकड़ा है अपन, इस प्रकार साक्षी गोपाल जी का समीकरण सबने कहा और चैतन्य महापुरुष ने। कोई व्यक्ति जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनता है तो उसे कृष्ण प्रेम मिलता है, और ये चैतन्य चैतन्य अमृत की धारा है और शरण भी है। भागवत के श्लोक को तोड़ने फोड़ने में तो दिक्कत होती है, उसको समझना कठिन होता है, लेकिन चैतन्य चेतन में तो सीधा है, समझ में आ जाता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहे चैतन्य चेतन कहे किसी बात सदा युक्त हैया यह सुने जे जन अचिरे मिले तारे गोपाल चरण। इस प्रसंग को साक्षी गोपाल जी के प्रसंग को जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, विश्वास करके कि वास्तव में घटना हुई थी, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा करके जो इस चरित को सुनता है तो उसे गोपाल का चरण मिलता है, भगवान कृष्ण का चरण कमल मिल जाता है। ब्रह्मांड देव गोपाल महिमा है हम नित्यानंद वक्ता जा श्रोता श्री चैतन्य सच्ची गोपाल जी की महिमा क्या कही जाए। इस कथा को कहे श्री नित्यानंद प्रभु वे वक्ता हैं और श्रोता हैं स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए कथा और विशेष महत्व की है। इस तरह से चैतन्य चरितामृत पूरा किया गया भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से संभव हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, साक्षी गोपाल जी की जय, हरे कृष्ण।